काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 115, 88, माच काफी। दिल दर्दा कीती पूरी ने, दिल दर्दा कीती पूरी, एक रहाउन लखी करुण जिहना दे जिड़िया, सो भी झूरी झूरी, एक भट्ठिट पई तेरी चिट्टी चादर चंगी फकीरा दी भूरी, दो साधी संगति दे ओहले रहे दे बुद्ध तिन्हा दी सूरी, तीन कहे हुसैन फकीर साईं दा खलकत गई अंधूरी, चार पूरी अर्थात भर दिया, झूरी झूरी अर्थात पछताना, भूरी अर्थात कंबली या लोई, साधी संगत अर्थात सूफी संगत, ओहले अर्थात ओट में, सूरी अर्थात मूर्ख, खलकत अर्थात संसार, अधूरी अर्थात अपूर्ण। व्याख्या, यह दिल अनेक दर्दों और गमों से भरा हुआ है, अर्थात इस दिल में मोह ममता और माया जाल संबंधी अनेक बातों भरी होती है, जबकि इन सभी का नाता दुखों से ही होता है, मगर ना समझी में मनुष्य इन दुखों से ही स्वयं को भरा पूरा महसूस करता है, उसमें प्रभु के नाम के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए भी वह दुख भोगता है। रहाऊं एक, पृष्ठ 116। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है वह भी दुखी महसूस हो करते हैं, अर्थात प्रभु भक्ति के बगैर प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं, और इसी कारण पछताना पड़ता है। एक, समाज में संसार में रहते हुए मनुष्य अपने बाहरी परिप्रेक्ष्य को साफ स्वच्छ रखने में ही उलझा रहता है, यह बाहरी आडंबर उसे पदार्थवादी बनाते हैं, परंतु वह इन्हें ही जीवन जीने का एक जरिया समझता है, समाज में उज्जवल छवि को ही चादर तुल्य कहा गया है, जिसके नीचे कई भोगवादी विकार पलते रहते हैं, संसार में मनुष्य दोहरा जीवन जीता जाता है, जबकि यदि वह फकीरी धारण कर ले तो उसे समाज में अपनी इज्जत या साफ सुथरी छवि से कोई लेना देना नहीं रह जाता है, वह अंदर बाहर से एक जैसा व्यवहार करता है, फकीरों द्वारा लपेटी हुई लोई या कंबली भूरे रंग की होती है, या वह समय के साथ साथ अपना असल रंग गवा कर भूरे रंग में तब्दील हो जाती है, उस पर पड़ा कोई भी दाग स्पष्टता से नजर नहीं आता, सभी भाव विकार उसमें खो जाते हैं, ना ही फकीरों को इस बात की परवाह होती है कि लोग या समाज उनके बारे में क्या कहते हैं, वह मस्त सा सभी से एक जैसा व्यवहार करते और हरेक स्थिति में सम्मान से जीते हैं, इसलिए दुनियादारी जीव से फकीरों को बेहतर कहा गया है। दो, जो लोग बेशक फकीरी धारण नहीं करते परंतु यदि साधु संगतों की संगति करते हैं तो उन्हें दिशा निर्देश प्राप्त होता है, वह फकीर न होने के बावजूद प्रभु के मार्ग पर चलने योग्य होता है। लेकिन वह मूर्ख है तो जो साधुओं या फकीरों की संगति से भी दूर रहते हैं और उनसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं समझते। तीन, इसी कारण शाह हुसैन की नजर में यह दुनिया अपूर्ण लोगों से भरी हुई है, अपनी अपूर्णता के कारण ही वह लोग दुख भोगते हैं और फिर पछताते हैं। चार, नवासी, राग वडहंस। दुनिया तो मर जावड़ा, वत ना आवड़ा, जो किछु कीता बुरा भला वो कीता आपना पावण, एक रहाओ आदमियों फिर मुर्दा कीता। मित्र प्यारिया तेरा चोला सीता गोर मंजल पहुंचावड़ा एक चार दिहाड़े गोइल वासा किया जाड़ा कित दुलसी वो पासा बालक मन परचावड़ा दो चहु जड़िया मिल झोमल झोली कंधे उठाए लेता डंडा ढोली पृष्ठ 117 जंगल जाए वसावड़ा तीन कह हुसैन फकीर रबाड़ा कूड़ कुड़ावा करदा ईमाड़ा खाकू दे विच समावड़ा चार वत अर्थात फिर पावड़ा अर्थात पाना गोर अर्थात कब्र मंजिल अर्थात अर्थी गोइल अर्थात तिनको की बनी झुग्गी पासा अर्थात दांव डोली अर्थात अर्थी खाकू अर्थात मिट्टी व्याख्या इस दुनिया में जो भी आया है वह नाशवान है अंततः उसे मर ही जाना है एक बार मृत्यु आ जाने पर फिर से इस दुनिया में आना असंभव नहीं होता इसलिए यहाँ रहते हुए मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसका फल उसे इसी जन्म में ही प्राप्त हो जाता है हर एक मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह इस जीवन को अच्छे ढंग से जिए अच्छे कर्म करे उसी की प्राप्ति उसे होगी एक रहाऊ कल तक जो आदमी कहलाता है जिंदा होता है जिस उसे मुर्दा होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता मालूम नहीं चलती हुई सांस कब बंद हो जाए मुर्दा होते ही जो भी रिश्तेदार और नजदीकी मित्र इत्यादि होते हैं वही सबसे पहले कफन की तैयारी में जुट जाते हैं अर्थात नजदीकी रिश्ते नाते और मित्र ही व्यक्ति के लाश में तब्दील होते ही उसे घर से ले जाने के लिए बेताब हो जाते हैं वह स्वयं उसे अर्थी पर लिटाकर कब्र तक पहुंचाकर आते हैं कब्र ही उसका फिर आखिरी पड़ाव साबित होती है एक यह दुनिया गोइलवास से ज्यादा कुछ नहीं है यह दुनिया तिनकों की बनी हुई झुग्गी है जिसमें कुछ समय के लिए ही मनुष्य ने रहना होता है फिर पता नहीं कौन सा दाव कैसे बैठे अर्थात इस दुनिया में मनुष्य बच्चों के समान खेले ही खेलता है और खेल सदा मन को ढांढस दिलाते या आनंद दिलाते हैं बच्चों के खेल अस्थिर होते हैं यदि उसमें किसी ने कोई जीत हासिल कर भी ली तो क्या फायदा दुनिया में हासिल की गई पदार्थों की जीत फिजूल ही होती है यह सिर्फ बच्चों को थोड़ी देर के लिए बहलाने के सामान ही है दो अंततः चार आदमी मिलकर मनुष्य को कपड़ों में बांधकर डोली की भांति कंधों पर उठाकर ले जाते हैं और उसे सदा के लिए जंगल में सुला देते हैं जंगल से भाव एकांत से है और आखिरी मंजिल कब्र ही है तीन इस फकीर की बात मानो यह झूठे झगड़े और लालच सदा मनुष्य का बुरा ही करते हैं और उसे अंत में खाक में ही मिला देते हैं चार पृष्ठ 118 90 काफी नाल सजर दे रही है झिड़का झंबा ते तकसीरा सो भी सिर ते सहिए जे सिर कट लैण धड़ नालो ता भी आह न कहिए चंदन रुख लगा विच बेहड़े जोर धिंग्याड़े खाइए मरण मूल ते जीवन लाहा दिलगिरी क्यों रही है कह हुसैन फकीर साईदा रब दा दीता सहिए झिड़का अर्थात झंबा डांट अर्थात डपट तकसीरा अर्थात कसूर या दोष आह अर्थात कराहना या आहे दिलगिरी अर्थात उदास व्याख्या मुझे अपने साजन अर्थात प्रीतम के साथ ही रहना है। बेशक उसके साथ रहते हुए मुझे कई प्रकार के डांट फटकार सहनी पड़े, यदि कोई दोष या इल्जाम भी लगे तो भी मैं सहने को तैयार हूँ, मगर अपने प्रीतम का पल्ला किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं। डांट फटकार या दोष इल्जाम से भाव प्रभु मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से है, क्योंकि यह मार्ग इतना सुगम नहीं होता, अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। उसका दामन सुख दुख प्रत्येक कठिन अवस्था में थामे ही रहना चाहिए, अंततः सफलता हासिल होकर ही रहेगी। उन्हीं कष्टों और परेशानियों को दोहराया गया है, या जैसे कि माना जाता है कि प्रभु अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा लेता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कितनी भी कठिन परीक्षा की घड़ी क्यों ना आ जाए, जैसे सिर धड़की बाजी लगने जैसे हालत हो जाए, तब भी उसके दिए हुए कष्टों को सिर माथे पर लेना चाहिए। कभी भी आहें भरना या हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। हमारे अपने आंगन में अर्थात मन में चंदन का वृक्ष लगा हुआ है, उसी से खुशबू हासिल करनी चाहिए, अर्थात प्रभु को अपने अंतस में ही खोजना चाहिए। फकीर का यही कहना है कि परमात्मा जो भी दे, सुख दुख कष्ट आराम जो भी दे, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। यह जीवन उसी की देन है, इसलिए उसके दिए गए हर सुख दुख को भी उतनी आसानी से स्वीकार लेना चाहिए। पृष्ठ 119 91 राग गौड़ी। नी असी आओ खिहाणा लिड्डी एक रहाओ नौ तारो डारो गुड़ी दी असी लेकर हां उड्डी एक साजन दे हत डोर असाड़ी मैं साजन दी गुड्डी दो इसु वेले नु पछता से जाए पौसे विच खुड्डी तीन कह हुसैन फकीर साईं दा सबु दुनिया जांदी बुड्ढी चार खिहाणा अर्थात खिलाऊं लुड्डी अर्थात इश्क का खेल नौ अर्थात नाम जाप खुड्डी अर्थात कब्र बुड्ढी अर्थात डूबती। व्याख्या आओ अर्थात सहेलियों हम तुम्हें इश्क के मस्ती का खेल खिलाएं, अर्थात मनुष्य को सदा खेल तमाशे ही पसंद आते हैं, वह उनमें ही आनंद ढूंढता है, इसलिए ऐसा खेल खेलना खेल खेलना भी पसंद करेगा जो प्रभु के इश्क में डूबा हुआ है। इस खेल में बेहद मस्ती और आनंद की प्राप्ति होगी होती है। रहाओ इस खेल में प्रभु के नाम की डोर वाली पतंग को लिया जाता है, यह पतंग ऊंचे आसमानों में ले जाती है, अर्थात पतंग और डोर के दृष्टांत से हुसैन इस खेल को समझाने का यत्न करते हैं। जितनी डोर लंबी होगी और उसे जितनी ढील दी जाएगी, पतंग उतनी ही ऊंचे आसमान में पहुंचती जाती है। प्रभु के नाम को जितना जपा जाएगा, जितना स्वयं को उस नाम के सहारे छोड़ा जाएगा, उतना ही मनुष्य प्रभु के चरणों में समर्पित होता जाएगा। एक इस पंक्ति में हुसैन एक बात और स्पष्ट करते हैं कि असल में मनुष्य तो पतंग है, डोर तो उस ऊपर वाले और हमारे साजन के हाथ में ही होती है। मनुष्य को कठपुतली कहा जाता है और परमात्मा को खवैया अर्थात खिलाने वाला, इसमें उसी भाव की पुष्टि की गई है। दो अंतिम सच्चाई यह है कि अंत में सारी दुनिया ने ही डूब जाना है, कुछ फना हो जाना है। इस संसार में कुछ भी जोड़ने या इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, मनुष्य समेत सभी वस्तुएं नाशवान है, सिर्फ प्रभु के नाम का जाप ही जीवन दान है। जीवन दान से भाव इस संसार में विदा लेते समय प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। 4.